शब्दावली में समास। समास प्रयोगों से भाषा में संक्षिप्तता और चुस्ती आती है। सतसाईकार बिहारी लाल को जो गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है, उसका प्रमुख कारण उनकी भाषा में समासिकता और कल्पना की समाहार शक्ति है। पृष्ठ संख्या 75। सूरदास ने इसमें सामान्यतः सामासिक भाषा का व्यवहार नहीं किया है, इसलिए सहज और सरल है, पर शरावली के दृष्टिकूटकों में उनकी भाषा बहुत सामासिक हो गई है। कहीं कहीं तो चार चार पांच पांच शब्दों के समास है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। पहला, काम पिता माता गुरु ता बपु युवती कोटि दरसाए। काम पिता ब्रह्म पिता कमल नाल गुरु बराबर कमल। गंगा सूत रिपु रिपु सिख मेरी सुनत नहीं सखी काह। गंगा सूत बराबर भीष्म, भीष्म रिपु बराबर अर्जुन, अर्जुन रिपु बराबर कर्ण अर्थात कान। तीसरा, बंधु कुमुद पतिसुता जो तुब रस मधुरे गावे। इसमें बंधु कुमुद पति पिता सुता पांच शब्दों का समास है। बंधु कुमुद बराबर कुमुद, बंधु बराबर चंद्रमा, चंद्रपति बराबर सूर्य, सूर्य पिता बराबर ब्रह्म, ब्रह्म सुता बराबर योग माया। यहाँ योग माया का अर्थ ग्रहण किया गया है मुरली के लिए। शरावली में दृष्टिकूट। दृष्टिकूट को दृष्टिकूट भी कहते हैं। दृष्टिकूट का अर्थ है दृष्टम कुटम यस्मिन अर्थात जिसमें कूट दृष्टिगोचर हो। दृष्टिकूट का अर्थ है दृष्टया कूटम अर्थात दृष्टि से छिपा हुआ। कूट का अर्थ होगा बुद्धि की दृष्टि की क्रीड़ा। दृष्टिकूट शब्दों का खेल ही है, जिसे पहेली या गूढ़ प्रश्न कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है चमत्कार उत्पत्ति अथवा कौतूहल का अभिवर्धन। जब कोई व्यक्ति इसका अर्थ समझ लेता है, तब उसकी कौतूहल वृत्ति शांत हो जाती है और वह चमत्कृत हो जाता है। सूरदास ने भी यह चमत्कार परक पद्धति अपनाई और इसमें गंभीर और प्रभुत रचनाएं प्रस्तुत की। इस प्रकार की रचनाएं सुर सागर में प्रभुत परिणाम में है। विद्वानों ने ऐसे कूट पदों के संकलन भी निकाले हैं। साहित्य लहरी की तो रचना ही कूट पदों में हुई है। शरावली में 937वें छंद से आरंभ कर 966 तक कुल 30 छंद दृष्टिकूटक है। नीचे उन पद्धतियों का संदर्भ उल्लेख किया जा रहा है। पहला, लंबे समस्त पदों के विलक्षण अर्थ ग्रहण द्वारा। सिंधु सीता सुतता रिपु गमनी सुन मेरी तू बात। इस पंक्ति में सिंधु गमनी का अर्थ किया गया है हंस गामनी। अब प्रत्येक समस्त पद के अर्थ का पृथक पृथक अवलोकन कीजिए। सिंधु सुता का प्रसिद्ध अर्थ है लक्ष्मी। आपटे के संस्कृत हिंदी कोश में केवल यही अर्थ है। यहाँ सिंधु सुता का अर्थ लिया गया है सीपी, क्योंकि वह भी समुद्र से उत्पन्न होती है। इस प्रकार सिंधु सुता सुत अर्थ हुआ मोती। पृष्ठ संख्या 76। आपटे के उक्त कोश में लक्ष्मी पुत्र का अर्थ है पहला घोड़ा, दूसरा लव और कुश का नाम, तीसरा कामदेव और चौथा धनी व्यक्ति। यहाँ मोती अर्थ नहीं दिया गया है, अतः अर्थ सानिध्य के रूप में मोती ग्रहण किया जाएगा। मुक्ता रिपु के अर्थ में किसी की प्रसिद्धि नहीं है, पर कवि समय ब्रैकेट में काव्य रूढ़ी ब्रैकेट बंद के अनुसार हंस मोती चुगता है, अतः मुक्ता रिपु का अर्थ किया गया हंस। हंसगामिनी हंस के सदृश गति वाली। इस पद्धति का प्रयोग अधोलिखित संख्यक छंदों में भी हुआ है, जैसे 937, 938, 940, 941, 942, 943, 946, 949, 950, 952, 954, 957, 961, 962, 964 और 965। दूसरा, रूपकातिशयोक्ति द्वारा, जैसे पंकज उर पंकज जिन केरे तेरो अटल सुहाग। यहाँ पंकज उर पंकज जिन केरे का अन्वय है जिन केरे पंकज अर्थात जिनके कमल ब्रैकेट में तेरे ब्रैकेट बन हृदय कमल में विराज रहे हैं। यहाँ कमल श्री कृष्ण के चरणों का उपमान है, अतः कमल का अर्थ है चरण कमल। अब अर्थ हुआ जिनके चरण कमल तेरे हृदय कमल में विराजमान है। इसी प्रकार अधोलिखित छंद में भी रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग है, जैसे धरत कमल में कमल कमल कर मधुर वचन उच्चार, कमला बाहन गहन कमल सो कमलन करत विचार। तीसरा, एक शब्द की अनेकार्थता द्वारा। सारंग ऊपर सारंग राजत सारंग शब्द सुनावे, सारंग देख सुन मृग नयने सारंग सुख दर्शावे। इस छंद में सारंग शब्द का प्रयोग 5 बार हुआ है। पांचों स्थानों पर इसका अर्थ क्रमशः इस प्रकार है। पहला हाथ, दूसरा पंसी, तीसरा अमृत, चौथा श्री कृष्ण और पांचवा स्वर्ग। 944, 945 तथा 946 संख्यक दोहों में भी इसी प्रकार सारंग के विभिन्न अर्थ लिए गए हैं। इसी पद्धति से जैसे दधिसूत बाहन सुभग नासिका दधिसूत बाहन देख्यो, दधिसूत बाहन वचन सुनत तुव अंग अंग अब रेख्यो। इसमें प्रथम दधिसूत का अर्थ कमल, द्वितीय का चंद्रमा तथा तृतीय का अमृत किया गया है। चौथा, शब्दों के अप्रसिद्ध अर्थ द्वारा। तीस भान द्वे मास सकल ऋतु सिंधु सुता सन जान। यहाँ भान का अर्थ अप्रसिद्ध अर्थ दिन लिया गया है, जिसका अपभ्रंश भानु शब्द से प्रतीत होता है। पृष्ठ संख्या 77। पांचवा, सामान्य शब्दों के संप्रयोजन अर्थ द्वारा। शशि को भ्रात कहत ता बाहन कुंद कुसुम ललचात। चंद्रमा का भाई कौन है? यद्यपि इस विषय में सभी कोश मौन है, किंतु इसका अर्थ यहाँ ग्रहण किया गया है बादल, क्योंकि बादल भी समुद्र से उत्पन्न होता है। समुद्र से तो मणि, अमृत, शंख, ऐरावत आदि अनेक पुल्लिंग आवृत पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, जिनके लिए सुंदर दोहा शास्त्री कथावाचकों में प्रचलित है। श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम शशि धेनु धन्वंतरी वीषबाज। पर यहाँ सप्रयोजन अर्थ बादल ही ग्रहण किया गया है। यहाँ बादल के वाहन का अर्थ किया गया है बिजली। आपटे के कोष में घन वाहन का अर्थ है इंद्र, शिव। ये अर्थ बहुव्रीहि समास मानने पर निकलते हैं। संबंध तत्पुरुष समास मानकर कोई अर्थ नहीं किया गया है। घन का वाहक बिजली करना बड़ा अटपटा लगता है। वाहन और बाह्य में आधार और आधेय का संबंध होता है। वाहन का छोटा और बाह्य का बड़ा होना कुछ जचता नहीं। गणेश का वाहन मूषक अवश्य है, पर वह सप्त दुहु गंधर्व है और सामान्य चूहे से बहुत बड़ा है। बिजली को घन वाहन के रूप में सूर्य ने अपने प्रयोजन से माना है और उन्हीं की मस्ती की कल्पना की है। पैराग्राफ चेंज। बिजली को घन वाहन के रूप में सूर्य ने अपने प्रयोजन से माना है और यह उन्हीं के मस्तिष्क की कल्पना है। सामान्यतः बादल को ही बिजली का वाहन माना जाएगा। सूर्य ने तो ऐसी विलक्षण कल्पना न की होती तो चमत्कार कैसे उत्पन्न होता और दृष्टिकूटक बनता कैसे। छठवां, पदांश या संपूर्ण पद को प्रहेली का सदृश बुझाने से। श्री बलदेव रास जो कहिए तामे भानु मिलाए, ताकि सुता कहत चतुरानन निगम सदा गुण गाए। यहाँ विषभानु समस्त पद को विच्छिन्न करके वृष को जो बलदेव की राशि कही जाती है ऐसा करके बुझाया गया है। यहाँ ध्यातव्य है कि श्री बलदेव जी का जन्म वृष राशि से हुआ था। इसी प्रकार शैल सुता धरिता रिपु बांधत अंग अंग पिय आच में शैल सुता धरी से अर्थ व्यक्त किया गया है गंगाधर बराबर शंकर भगवान। गंगाधर समस्त पद को खंडित किया गया गंगाधन धर। फिर यहाँ गंगा को बुलाया गया शैल सुता से। गंगा जी हिमालय शैल से निसृत है, अतः वह शैल सुता हुई। यहाँ गंगा को प्रहेली कारक बुझाकर उसमें धड़ जोड़ दिया गया है। कहीं कहीं संपूर्ण पद को भी उन्होंने वैसे बुझाया है। प्रथम मथत जल निधि जो पटक्यो सो लागत सब नारी। पृष्ठ संख्या 78। यहाँ मथते समय समुद्र ने जिसे प्रकट किया इस वाक्य द्वारा लक्ष्मी को बुलाया गया है। सातवां, शब्दों को अक्षरों में खंडित करके उन अक्षरों को प्रहेली कारक बुझाने से। 22 अजा शब्द मन मोहन रटत रटत दिन रैन। इन पंक्ति में 22 बराबर काक तथा आजा बराबर बकरी का शब्द बुझाया गया है। काक का शब्द होता है का तथा बकरी का म। का तथा म मिलाकर बना काम अर्थात प्रेम भाव। यही काम शब्द के अक्षरों का और म को खंडित करके उसे बुझाया गया है। काक का शब्द का तथा अजा का में भी माना जा सकता है। ऐसा मानने पर उनसे शब्द बनेगा कामे। कामे शब्द काम की पर्याप्त निकट है। इनकी दूरी होने पर भी सूरदास प्रयोजनीय अर्थ मान लेते हैं। आठवां, शब्दों के गौण अर्थ द्वारा। जलसूत वाहन देख बदन तुव ब्रह्म सुता अकुलानी। यहाँ ब्रह्म सुता बराबर सरस्वती का गौण अर्थ वाणी वाक बराबर बोली ग्रहण किया गया है। नौवां, समस्त पद के एक अंग से संपूर्ण पद के अर्थ ग्रहण द्वारा। इंद्र सुता पति भुजा लगन लखि जलसूत हृदय लगावे। यहाँ इंद्र सुता का अर्थ लिया गया है बिजली। बिजली का पति माना गया है घन। घन से घनश्याम बराबर श्री कृष्ण का अर्थ लिया गया है। घनश्याम समस्त पद है, घन उसका पूर्व पद है। इस प्रकार विलक्षण पद्धतियों से सूरदास ने अपने दृष्टिकूटों की रचना की है। इनका अर्थ निकालने में बड़े बड़े पंडितों का बौद्धिक व्यायाम हो जाता है। अतः उनके सुर सागर एवं सुर सरावली में कुछ ही दृष्टिकूट पद मिलते हैं, किंतु साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों का समुच्चय ही है।